आप सुन रहे हैं लाइव हिंदुस्तान पॉडकास्ट ब्रॉट टू यू बाय HD स्मार्टकास्ट।
आपका हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे सेक्स से संबंधित सभी जानकारियाँ, चाहे वो सेक्सुअल हेल्थ हो, हाइजीन टिप्स हो, रिलेशनशिप हो या उससे जुड़ी कोई भी समस्या। तो आइए लेट्स टॉक खुलकर।
क्या आपको पता है कि गैस और एसिडिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं? अगर हाँ तो कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये दोनों एक ही चीजें हैं और ऐसा लगने के कारण वो दोनों के लिए ही सेम सोल्यूशन अपनाते हैं। अब जब सोल्यूशन ही सही नहीं है तो फिर इनसे छुटकारा कैसे मिलेगा? आज हम बात कर रहे हैं डाइजेशन से जुड़ी दूसरी मेजर प्रॉब्लम के बारे में, जिसे गैस या फिर ब्लोटिंग कहा जाता है। अमूमन तौर पर शरीर में गैस का बनना बहुत आम बात है, लेकिन ये प्रॉब्लम कुछ लोगों को बहुत परेशान करती है, साथ ही साथ दूसरी प्रॉब्लम्स को भी इनवाइट करती है, जैसे कि पेट का फूला रहना, अनकंफर्टेबल महसूस करना और सबसे मेजर प्रॉब्लम फैट्स। अगर आप ब्लोटिंग का सलूशन जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि आपको ब्लोटिंग आखिर क्यों हो रही है।
शरीर में गैस बनने के कई कारण हो सकते हैं। जब आप कुछ खाते पीते या फिर थूक को निगलते हैं तो आपके मुंह के जरिए कुछ गैस आपके पेट में चली जाती है। पेट में खाना पचाते वक्त भी कुछ गैसेस रिलीज होती है। इसके अलावा अगर आप खाना ठीक तरह से चबा कर नहीं खाते या फिर कुछ ऐसा खाते हैं जिसे आपका पेट और छोटी आंत पचाने में सक्षम नहीं है तो ये सब ही बड़ी आंत में चला जाता है। यहाँ मौजूद बैक्टीरियाज की टीम इसे गलाने का काम करती है। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसेस रिलीज होती है जो आमतौर पर फैट्स के जरिए बाहर निकलती है। आपकी बड़ी आंत में तकरीबन 500 मिलीलीटर गैस हमेशा मौजूद रहती है, इसीलिए हर स्वस्थ व्यक्ति दिन में 13 से 21 बार गैस पास करता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर ये आपको अनकंफर्टेबल करता है और आपका पेट हमेशा फूला रहता है तो ये इशारा है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई तो गड़बड़ है, और इसे दूर करने के लिए आपको आपके लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करने बेहद जरूरी है, खास तौर पर अपने खान पान में।
एसिडिटी की तुलना में ब्लोटिंग एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, क्योंकि इस दौरान आपको ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीजें हैं जो आपको सूट कर रही हैं और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपको सूट नहीं कर रही, और ये सबसे अच्छे तरीके से आप ही बता सकते हैं।
कुछ लोगों की फल और सब्जियों में मौजूद फ्रुक्टोज को पचाने की क्षमता कम होती है, ऐसे ही कुछ लोग डेयरी प्रोडक्ट्स में मौजूद लैक्टोज को पचाने में सक्षम नहीं होते और उन्हें गैस की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा वो चीजें जिनमें रेफिनोज पाया जाता है, रेफिनोज एक तरह की शुगर है जो कि दालों और सब्जियों में पाया जाता है, इसे भी छोटी आंत नहीं पचा पाती, इसीलिए कुछ लोगों को राजमा खाकर तो कुछ लोगों को गोभी खाकर गैस बनने लगती है। इसके अलावा आर्टिफिशियल स्वीटनर खाने के बाद भी ऐसा हो सकता है। इसी के साथ अगर फ्रेश होने जाने में भी आप देरी करते हैं तो इस वजह से भी ब्लोटिंग हो सकती है। इस दौरान गैस रुके हुए स्टूल से होकर गुजरती है, इसमें मीथेन गैस भी रहती है जिसके कारण आपके फैट ज्यादा स्मेली हो सकते हैं।
यानी हो सकता है कि किसी को गोभी खाकर ब्लोटिंग फील हो और किसी को कुछ भी नहीं। ये तो बात हुई खान पान की, लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि ब्लोटिंग का सबसे बड़ा कारण कुछ और है, और वो है स्ट्रेस यानी तनाव।
ये गैस कई कारणों से बनती है। गैस कई बार पेट में नहीं बनती है, अत्यधिक तनाव के कारण व्यक्ति बहुत सारी हवा खाने के साथ, पानी पीने के साथ पेट में निगल लेता है, और ये हवा पेट में जाकर आंतों में गैस का रूप धारण कर लेती है एवं पेट फूल जाता है। पुराने समय में ये कहा जाता था कि खाने को धीरे धीरे चबा चबा के शांत मन से खाना चाहिए। अगर आप जल्दबाजी में खाना खाते हैं, बिना पूरी तरह चबाए हुए खाना खाते हैं, तो इस प्रक्रिया में बहुत सारा खाना बिना पचे ही निकल जाता है और आंतों में जाके बैक्टीरिया द्वारा इसमें विघटन होकर के गैस पैदा की जाती है। तभी तो पुराने समय में कहा जाता था कि हर एक गैस को 32 बार चबा के खाना चाहिए, जिससे कि उसका पाचन सुचारू रूप से हो सके। आप अपने को खाना समय पर खाना चाहिए, उपयुक्त समय खाने को देना चाहिए, अच्छी तरह चबा चबा के खाना चाहिए ताकि लार का खाने के साथ मिश्रण अच्छी तरह से हो सके। और उसके बावजूद भी अगर आपको गैस की समस्या है तो विभिन्न प्रकार के टेस्ट के माध्यम से उदर रोग विशेषज्ञ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ये सुनिश्चित करते हैं कि आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन का कहीं अब्सॉर्प्शन कम तो नहीं हो रहा है और उसके कारण ही आपको गैस तो नहीं बन रही है।
तो हमेशा खाने को तसल्ली के साथ खाएं ताकि एक्स्ट्रा एयर आपके पेट में ना जाए। इसी के साथ खाने के बाद अपनी बॉडी को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करें कि कौन सी चीजें हैं जो आपको एनर्जेटिक फील कराती हैं और कौन सी चीजें हैं जिन्हें खाने के बाद आपको लीथल फील होता है या फिर ब्लोटिंग फील होती है।
तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अपना फीडबैक शेयर करने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब एंड ट्विटर पर। हमारा हैंडल है @HTSmartcast। साथ ही ऐसे और पॉडकास्ट सुनने के लिए आप लॉग इन करें www.htsmartcast.com पर।
दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय पतंजलि। तो आचार्य जी, मेरा आपसे आज का सवाल है ये कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में हम आजकल देखते हैं कि आयुर्वेद के विभाग खुल रहे हैं, क्या आप हमें ये समझा सकते हैं कि आयुर्वेद और एलोपैथी ट्रीटमेंट में क्या अंतर है और क्यों आजकल हॉस्पिटल्स आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं?
जो विज्ञान को मानने वाले, यानी कि जो मॉडर्न मेडिकल साइंसेज को जो पढ़े हुए और जो अपने फील्ड के बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, वो लोग भी हैं। और आज एक सिरे से तो वो लोग योग और आयुर्वेद की बात भी करने लगे हैं। इसका मतलब उसमें दम है, उसमें सामर्थ्य है, तो वो लोग योग आयुर्वेद की आज बात करने लगे हैं। और बड़ी बात, आज बड़े बड़े जो एलोपैथिक हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल में आयुर्वेद का अलग से विभाग खुल रहा है, पंचकर्म का खुल रहा है, योग के लिए आज जो है वहाँ योगाचार्य रखे जाने लगे गए हैं। बड़े बड़े होटलों में स्पा और बड़े बड़े होटल में आज कहते हैं हमारे यहाँ योगा भी होती है, आज कहते हैं हमारे यहाँ पंचकर्म भी होता है। इसका अर्थ क्या है? हो सकता है कि आप के पास इतना साधन या समय ना हो कि आप 5-star होटल में जाकर के आपको आप पंचकर्मा करा सकें। हो सकता है कि बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाकर के आप उन चिकित्सा को ना ले सकें, पर इतना तो हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर सकते हैं या अपने अंदर हमको भरोसा होना चाहिए। जब सारी धरती के लोग उन विधाओं को लेकर के आज आगे बढ़ रही है या उनकी रुचि पैदा हो रही है, तो फिर हम स्वयं इसके लिए जागरूक न रहें तो ये हमारी बुद्धिमत्ता नहीं है। आप सोचिए ना कि एक बड़े से मॉडर्न हॉस्पिटल है, बिल्कुल 5-star नुमा हॉस्पिटल है, वहां भी अब एक योग और आयुर्वेद का एक विभाग एक कहीं ना कहीं एक उसका शुरू हो गया है। इसका अर्थ यह है कि वह जीवन में इग्नोर करने वाली चीज तो नहीं है। तो आपको फिर उसको कैसे अपनाना है? तो जो उनमें लिखा हुआ है भाई, आयुर्वेद जैसे मैंने कहा पैथी नहीं है, पैथी नहीं तो आयुर्वेद क्या है कि जो लिखा है उसको जीवन में उतारो, प्रतिदिन जीवन में आप उसको धारण करो, वही आयुर्वेदोक्त जीवन है।
अगर आपको आचार्य बालकृष्ण से की गई ये बातचीत इंटरेस्टिंग लगी हो तो पतंजलि वेलनेस पॉडकास्ट को सुने ऑन HTSmartcast.com।
इस पॉडकास्ट पर अपडेटेड रहने के लिए हमें फॉलो करें @HTSmartcast। हम सारे मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग ऑन टू www.htsmartcast.com।